शांति। ग्रुप 5, सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो, इस समय भी तख्त नशीन हो कि भविष्य में बनना है, अभी कौन सा तख्त है? और स्वराज्य का तख्त, एक अकाल तख्त, अकाल अर्थात अविनाशी, अकाल तक, दूसरा दिल तक। तो दोनों तख्त स्मृति में रहते हैं। तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी आत्मा तख्त पर वही बैठता है जिसका अधिकार होता है, राज्य होता है। अगर राज्य नहीं तो तख्त भी नहीं। तो जब आप अकाल तख्त नशीन है तो भी स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो भी बाप के वर्षे के अधिकारी है, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। तो तख्त नशीन अर्थात राज्य अधिकारी, राज्य का अधिकारी हो कि कभी कभी तख्त से नीचे उतर आते हो, सदा तख्त नशीन हो कि कभी कभी क्यों, कभी तख्त पर बैठकर थक जाए तो नीचे आ जाए, नहीं। दिल तख्त इतना बड़ा है, कितना बड़ा, वो तो छत्र छाया थी। दिल तख्त इतना बड़ा है जो सब कुछ करते हुए तख्त नशीन, कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हो वो तो वो कर्म भी कितने श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सब कर्मेंद्रिया लॉ और ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। अभी देखो, प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो लॉ और ऑर्डर चल सकता है? एक लॉ पास करेंगे तो दूसरा लॉ ब्रेक करेगा। तो तख्त नशीन आत्मा अर्थात सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली, श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य भी जमा होता है, डबल है। तो प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? खुशी, शक्ति, दुआएं, नशा, शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो सबसे पहले खुशी होती है, और दिल खुश तो जहान खुश। तो दिल सदा खुश रहता है या कभी संकल्प मात्र भी दुख की लहर आ जाती है? कभी भी नहीं आती, या कभी कभी चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। दुखधाम से किनारा कर लिया, किया है या एक पाव इधर एक पाव उधर है, एक दुख धाम में एक सुख धाम में, ऐसे तो नहीं। आप कलियुग निवासी हो, कलियुग निवासी हो या संगम निवासी हो, कि कभी कभी कलियुग में चले जाते हो? संगम योगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि क्यों दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो। तो सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। जो मास्टर सुखदाता है वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? तो क्या सुना? तख्त नशीन आत्माएं हैं, यह अनुभव करते हो। कौन सा तख्त? अकाल तख्त और दिल तख्त। ये दिल तख्त कैसा है?
कर्म करते हुए भी
इसमें बैठ सकते हैं। और कैसा है ये तख्त? कितना प्योर है? इतना प्योर है कि इसमें कौन बैठ सकता है? जो सदा प्योर आत्मा है वही बैठ सकती है। ऑटोमेटिकली कर्म की गति प्रमाण, कर्म के चक्र के गति प्रमाण, इस पर कौन बैठ सकता है? संडे मुरली चलिए, अलंकार। तीसरा अलंकार, ऑटोमेटिकली कर्म के चक्र की गति प्रमाण इस तख्त पर वही बैठ सकता है जो
कभी भी अपवित्रता और अमर्यादा
नहीं, वो तो है। और स्वदर्शन चक्र पांच चौथा अलंकार है, हम तीसरे अलंकार की बात कर रहे हैं, जो फॉलो फादर करते हैं। तख्त नशीन आत्माएं कौन है? ये तख्त इतना प्योर है कि जो आत्माएं प्योर है वही इस तख्त पर बैठ सकती है। संकल्प में भी अमर्यादा और अपवित्रता नहीं, संकल्प में भी अमर्यादा और अपवित्रता नहीं, और कर्म चक्र की गति के प्रमाण ऑटोमेटिकली इस तख्त पर वही बैठ सकते हैं जो फॉलो फादर करने वाले हैं। फिर भी तख्त से बाप तो ऑफर करते हैं, क्या कौन सा प्रस्ताव है उसका? सदा तख्त नशीन बनो, परंतु बच्चे उतर आते तख्त से नीचे, ये खेल करते हैं, कभी तख्त के ऊपर कभी तख्त से नीचे। तख्त के नीचे की दो स्टेजेस है, कौन सी? एक महसूसता की, जिसमें व्यर्थ कर्म है, उसमें भी कर्म करने से पहले कर्म करते हुए और कभी कर्म के बाद, और दूसरा है पश्चाताप। तो सदा तख्त नशीन, फिर उसमें महसूसता भी नहीं और नीचे की जो स्टेज है पश्चाताप भी नहीं। तो जब अकाल तख्त नशीन है तो भी स्वराज्य अधिकारी, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो भी बाप के वर्ष के अधिकारी, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। तो तख्त नशीन अर्थात राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी हो या कभी कभी तख्त से नीचे आते हो, सदा तख्त नशीन हो या कभी कभी के हो, कभी तख्त पर बैठ कर थक जाए तो नीचे आ जाए नहीं। दिल तख्त इतना बड़ा है जो सब कुछ करते भी तख्त नशीन, दिल तख्त भी बड़ा है और उसकी छत्र छाया भी बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी? कि सारे इसके अंदर रहते सब कुछ कर सकते हो, और इसके अंदर रहते सारे विश्व का भ्रमण कर सकते हो, और कोई भी सूक्ष्म वाइब्रेशन इसमें नहीं आ सकता, और ना ही प्रकृति वार कर सकती, ना ही माया वार कर सकती है, ना ही स्वभाव संस्कार वार कर सकता है, ना ही व्यक्ति वैभव कुछ भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, वार नहीं कर सकता, इतना बड़ा तख्त है। तख्त भी और छत्र छाया भी बहुत बड़ी है। सेफ्टी का, रूहानी सेफ्टी का साधन भी है छाया। तो कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन, अकाल तख्त पर आत्मा विराजमान वो एक तख्त, और परमात्मा हृदय सिंहासन पर विराजमान। अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हो तो कर्म कैसे होते हैं? आत्म अभिमानी स्थिति में किए हुए कर्म कैसे होते हैं? लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण, तो कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रिय लॉ और ऑर्डर बन रहती है। किसी भी बात का फैसला करना है तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर फैसला करो। स्लोगन है, वरदान में है ना आज। तो कर्मेंद्रिय लॉ एंड ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर चल नहीं सकता। अभी देखो, प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो लॉ और ऑर्डर चल सकता है। एक लॉ पास करेंगे तो दूसरा ब्रेक करेंगे, एक पारित होता है तो दूसरा खारिज होता है। तो तख्त नशीन आत्मा अर्थात सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाले। तो माता यही फल खाती है या रख देती है? माताओं को आदत होती है बाबा ने कहा फल को रख देने की। बाबा ने कहा खूब खाओ, अभी खाओ, रख नहीं देना। एक सेकंड खाओगे तो एक समय का कई गुना अनुभव होगा। श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। कब मिलता है प्रत्यक्ष फल? बाबा उधारी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। आग में हाथ अभी डालोगे तो अभी फल मिलेगा,
अभी दुख दोगे किसी को तो तभी मिलेगा, दुख मिलेगा अभी।
तो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। उधारी का सिस्टम इधर नहीं है, तुरंत अविलंब श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य भी जमा होता है, वो दूसरी बात है, डबल है। तो प्रत्यक्ष फल क्या मिला? खुशी, शक्ति, नशा, दुआएं, पुण्य, पुण्य का खाता जमा हुआ। और क्या मिलता है? प्रत्यक्ष फल क्या क्या है? और अतीन्द्रिय सुख, सुख, शक्ति, शांति, आनंद, ये सब कुछ मिल जाता है श्रेष्ठ कर्म में। अगर ये नहीं मिल रहा है तो शायद वो फिर श्रेष्ठ कर्म नहीं है। सेवाएं तो बहुत की, परंतु सेवाओं के बाद में दुख की अनुभूति है। तो कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहीं तो खेचातान चल रही है, कहीं तो अहंकार का युद्ध चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो सबसे पहले खुशी होती है, और दिल खुश तो जहान खुश। तो दिल सदा खुश रहता है या कभी संकल्प मात्र भी दुख की लहर आ जाती है? अगर दुख की लहर आ रही है तो उसको क्या कहा जा सकता है? क्या हो रहा है? कौन सा सूक्ष्म मनोविज्ञान काम कर रहा है अंदर? सेवाएं तो बहुत महान सेवाएं की, निस्वार्थ भाव है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, पवित्र हृदय है, परंतु दुख की लहर आ गई तो क्या हो गया? क्या हुआ ऐसा? मिक्सचर है और दुख की लहर, कहीं ना कहीं श्रीमत को तोड़ा है, सुखदाता को भूल कर, और दुख की लहर आ रही है। लहर अर्थात संकल्प, लहर अर्थात एक फीलिंग, लहर अर्थात अंदर ही अंदर एक भाव दुख का, कोई ना कोई बोझ है। हमको तो लग रहा है हम सेवा कर रहे हैं, पर शायद वो सेवा दूसरों को, दूसरों के दुख का कारण है। मैंपन का टक्कर, मैं को प्रदर्शन करने की अंदर ही अंदर अभिप्सा है, भावना है, अंदर से क्या इच्छा है, कोई ना कोई नाम और मान और शान की इच्छा है। बाप को प्रत्यक्ष करने से ज्यादा स्वयं को प्रत्यक्ष करने की इच्छा ज्यादा है। बाप हो ना हो, हम होना चाहिए। हाँ, दोनों होने चाहिए, नहीं पर हमारी ज्यादा होती है इच्छा की, हम पहले हो, उसकी वजह से दुख है। कभी भी नहीं आता या कभी कभी चाहते नहीं है, ये तो कोई नहीं चाहता संसार की दुखी हो, पर फिर भी आता है। दुखधाम से किनारा कर लिया, किया है या एक पाव इधर एक पाव उधर, एक दुखधाम में एक सुखधाम में, ऐसे तो नहीं आप कलयुग निवासी हो या संगम निवासी हो कि कभी कभी कलयुग में चले जाते हो? संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, तो दुख है अर्थात अभी ब्राह्मण बने नहीं है। पहले तो ये स्वीकार करो पहले इसका, हाँ फिर उसके बाद में आगे की प्रक्रिया चालू होगी। पहले स्वीकृति चाहिए कोई भी चीज को जीतने के लिए, कि ये हमारी, हम यहाँ है अभी, कितने हैं पानी में वहां, पहले तो पता चले कि मैं यहाँ हूं। पहले तो ये कोई स्वीकार ही नहीं करता कि हमारे पास दुख है, दुखी है पर स्वीकार नहीं करता बाहर से। पहले स्वीकृति चाहिए कि ब्राह्मण फिर तो पुरुषार्थ होगा ना ब्राह्मण बनने का, कि अभी मुझे ब्राह्मण बनना है। बुरा लगता है कहने में, बड़ा दुखदायी वाक्य है ये कहने में, कि इतने सालों से मुरलियां रिपीट कर रहे हैं और जोर शोर से बुलंद आवाज में कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और अभी जब ब्राह्मण की परिभाषा जानी तो पता चला ये तो है ही नहीं। दुख का नाम निशान नहीं, ना तो नाम और ना ही निशान, ना कोई चिन्ह और ना ही उसका नाम, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो। तो सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, जो मास्टर सुखदाता है वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? तो बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया, स्वयं तो सुख स्वरूप है ही, लेकिन सुखदाता के बच्चे और औरों को भी सुख देने वाले मास्टर सुखदाता है। तो दूसरों को सुख देते हो या सिर्फ स्वयं सुखी रहते हो? दाता हो ना, जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। तो बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, अनुभव है ना, तो फॉलो फादर करो। ऐसे नहीं कोई दुख देता है तो आप भी दुख देंगे, नहीं। अच्छा, कोई दुख दे रहा हो तो आप क्या करेंगे, उसे लेंगे या नहीं? आपका स्लोगन ही है ना, दुख दो ना दुख लो, लेना भी नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को दुख दे तो नहीं रहे हम, परंतु ले जरूर रहे, उसका क्या करें? ये नई शिक्षा है बाबा देते हैं यहाँ पे कि दुख न ले। दुख लेने की तो जैसे हमें आदत है, एक विचित्र सा प्रेम है दुखों के प्रति। अगर कोई दुख ना दे 10 दिन, ताक में रहती है आत्मा कि 10 दिन हो गए किसी ने मुझे कुछ बोला कैसे नहीं, और जैसे किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा बहुत तो ऐसे पकड़ लिया, झपट लिया कि बस उसका ही चिंतन दिन रात, फिर जैसे उसका इंतजार था कि कौन आए और दुख दे दे। दिया दुख, गलत व्यवहार क्यों नहीं कर रहा है कोई? जब तक सब ठीक चल रहा है तो कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। जैसे किसी ने कुछ किया तो जैसे हम उसके इंतजार में थे, दिन रात पूरे विचार संकल्प उसी में केंद्रित हो गए, बस वही सोच रहे उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों? पर चिंतन का है वो जाल है, क्यों और क्या का क्वेश्चन। फिर चक्र राइट घूम रहा था और अभी लेफ्टिस्ट, वाम मार्गी, वामपंथी को लेफ्टिस्ट कहा जाता है, लेफ्ट में घूमना चालू होता है, चक्कर चक्कर में आ जाता है, चक्कर चक्री चक्री में आ जाते हैं, और फिर चकनाचूर, क्या और क्यों का जाल, दूसरों के पर के उलझन का, पर के चक्र की उलझन में आ जाते हैं। चक्र जो इधर घूम रहा था वो इधर घूमने लगता है। दुख लेना, सुख मांगते हैं तो दुख मिलता है, सुख की चाह दुख को जन्म देती है। सुख है इधर, मांग रहे उधर, सोच रहे वो देगा, ये देगा, ये देगा, ये चाह और ये आकांक्षा ही दुख को जन्म देती है। और जो संसार में दुख है या सुख है, दुख पर सुख का नाम लिखा रहता है ऊपर से। दुख दुख के रूप में नहीं होता है, ऊपर सुख लिखा रहता है, अंदर दुख समाया रहता है, और वो इसी के लिए भ्रमित करता है। ऐसा लगता है कि सुख जो है वो सदा सुख रहना चाहिए, जैसे अशरीरीपन में अशरीरी अवस्था हो जाए योग में, तो ऐसे होता है कि ये अशरीरी अवस्था में बहुत दुख भी मिला थोड़ा बीच बीच में, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सुख की स्थिति है, उसमें सदैव सुख। तो जो सच्चा सुख है वो भीतर है, वो अंदर है, और उसमें सदैव सुख है। परंतु जो सुख कल्पित है, कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए, वो खाते समय बहुत सुख है, परंतु जब डायरिया चालू होता है तो फिर वो दुख में रूपांतरण हो जाता है उसका। तो फिर वो क्या था?
वॉलपेपर,
स्क्रीन सेवर। किसी कैदी को बताया था ना एक बार, उसको ऑप्शन दिए जाते हैं, यमराज नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, तो कहते हैं मुझे एक नजारा दिखाओ पहले, कैसे कैसे है दोनों। बोलते ठीक है, एक बड़ा स्क्रीन, ये है स्वर्ग। स्वर्ग में देखा तो इतना दुख, इतना दुख, कोई किसको मार रहा है, चिल्ला रहा है, पीट रहे वहां पर लोगों को, कहते बाप रे। फिर स्वर्ग का चित्र, आहा, इतना सुंदर चित्र, अप्सरा नृत्य कर रही है, वहां पे सब बगीचे है, फाउंटेन्स है, पंछी है, वो कहता है मैं नर्क में ही जाऊंगा। नर्क में जाते हैं तो जाते ही अंदर उसको पकड़ते दो लोग और पीटना चालू करते है, तेल में तलते है, तो बोलते वो क्या था? वो तो स्क्रीन सेवर था। दुख जो होता है, जो वह सुख जो सदा सुख नहीं है, वो कल्पित सुख है, वो सुख है ही नहीं, उसका मुखोटा सुख का है पर अंदर दुख समाया हुआ है। क्योंकि अगर जो चीज सुख देती है उसको सदा ही सुख देना चाहिए, उसे ही सुख कहा जाएगा। बाकी संसार में जो कुछ है वो केवल भ्रमित करती है, बाहरी सौंदर्य जो है वो भी एक भ्रांति मात्र है। देह की सौंदर्य भी एक भ्रांति ही है, जो व्यक्ति लगता है इससे मुझे सुख मिलेगा, भ्रम है। और सारे उपन्यास और सारे सिनेमा और सारे कवि और भी इसको भ्रमित कर देते चित्त को, युवकों के, जो उनको लगता है ये सुंदर ये असुंदर, ये सुखदाई ये दुखदाई, ये सुखदाई नहीं, इस तरह से भ्रांति उत्पन्न करता है। यहाँ बात बाबा कर रहे हैं दुख लेने की। क्यों लेते हैं हम दुख? लेने की आदत है, हम लेते नहीं है वो देते हैं। हम ऐसा तो बोलते ही नहीं हम लेते हैं, पर वास्तविकता वही है कि हम लिया तो हमने ना, चाहे उसने कितना भी दुख दिया, पर लिया किसने? हमने ही लिया। मतलब हमारे सुख और दुख उनके कर्म, उनके बोल और उनके व्यवहार पर निर्भर है, आश्रित है उन पर। जैसा वो करेंगे वैसे हम। वो दिखाए महावीर, जो वर्धमान महावीर, वो महावीर, महावीर नाम तो उसको बाद में मिला, उसका बचपन का नाम तो वर्धमान है। महावीर, अब महावीर क्यों कहा उसके लोगों ने? क्या कौन सा युद्ध उसने? ना कोई युद्ध किया, ना उसके पास अस्त्र शस्त्र है, ना ही किसी को पराजित किया, फिर भी उसे महावीर कहा गया। क्यों? किसको जीता उसने? उसकी सहन शक्ति, उसकी कर्मेंद्रिय जीत है। वो दिखाया, एक व्यक्ति आता है और महावीर खड़ा रहता है अपनी ध्यान मग्न अवस्था में। वो व्यक्ति कहता है, वो ग्वाला रहता है, मेरे ये गैया है, तुम इनको देखो, मैं आता हूँ थोड़ा। सुबह उसको कहता है, तो महावीर का तो ध्यान ही नहीं, वो अपनी योग अपनी अवस्था में है मगन। उसको लगता है इसने सोच सुन लिया, इसको इसने तो सुना ही नहीं, और वो व्यक्ति चला जाता है। दोपहर में वो व्यक्ति आता है तो देखता है गाय तो वहां है ही नहीं, सब चली गई गाय तो वो इस पर क्रोधित होता है, तुम क्या कर रहे थे, तुमको तो बोला था ना, क्या तुम बहरे हो, क्या तुम अंधे हो, इसे बहुत गालियां देता है उसको। और वो तब भी नहीं सुनता तो वो क्या करता है, फिर उसके कान में खूंटिया ठोक देता है। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जैन साहित्य में। और पूरा लहूलुहान हो जाता है महावीर, शांत, कोई रिएक्शन नहीं, चुप। और फिर वो व्यक्ति उन्हें ढूंढने जाता है, और शाम तक ढूंढ के आता है तो देखता है कि वो सारी गाय उसके पास ही है, आ गई है वापस महावीर के पास। तो कुछ कहता नहीं है, उनको लेके चला जाता है। तो वहां पे दिखाया है बीच बीच में बुद्ध और महावीर के जीवन जीवन में ऐसा दिखाया कि देवताएं बीच में आकर उनसे बातें करते। तो देवताएं आते हैं वहां से, वहां पे, और देवताएं उसको कहते हैं कि आपको इस तरह पीड़ा होते हुए देखकर हमें बहुत दुख होता है, आपकी हम रक्षा करना चाहते हैं। तो बोलता है कि उसने जो कुछ किया और आप जो कर रहे हो इसमें ज्यादा भेद नहीं है मेरे लिए। वो अपने तरीके से मेरे मार्ग में आ रहा था, आप अपने तरीके से मेरे मार्ग में आ रहे हो। उसने जो कुछ किया उससे मैं ना, तो मेरे अंदर कोई दुख है उनके प्रति, ना ही उनके प्रति कोई घृणा भाव है, ना ही नफरत है, ना ही मुझे उनसे बदला लेना है। और आप जो कह रहे हो अभी, प्रेम बरसा रहे हो और रक्षा के लिए कह रहे हो, इससे भी मैं अप्रभावित हूं। उसका जो सुख है वो इधर है, अपने अंदर ही है। बाहरी व्यक्ति उसे दुख दे सुख दे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये चरम अवस्था है योगी की। तो बाबा कह रहे हैं, आपका स्लोगन ही है ना दुख दो ना दुख लो, तो दुख ना लो ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। हम दुख देते नहीं है किसी को, पर लेते जरूर है। संवेदनशीलता, सेंसिटिव नेचर बहुत बड़ी बाधा है अध्यात्म के मार्ग में, बहुत बड़ी बाधा। लेना भी नहीं है, अगर लेंगे तो सुख के साथ दुख भी मिक्स हो गया, तो लेना भी नहीं है। कोई कितना भी कुछ हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सदा चल रहो, जरा भी कोई हिला नहीं सकता। अंगद हमारा उदाहरण है। तो कोई कितना भी हिलाए, कोई कितना भी दुख दे, पीड़ा दे, कितने भी कटु शब्द बोले, कितना भी गलत व्यवहार करे, दोषारोपण करे, निंदा करे, अपमान करे, सबसे ज्यादा व्यक्ति को निंदा ही लाती है। जब निंदा होती है तब वास्तविक हम क्या है वो पता चलता है। बड़े बड़े भाषण दे रहे एक तरफ, परंतु जब कार्य व्यवहार में निंदा होती है तब पता चलता है कितनी योग की हमारी अवस्था है, कहाँ खड़े हैं। अच्छा, सभी अंतर्मुखी सदा सुखी हो, पांडव क्या समझते हैं? अंतर्मुखी है या थोड़ा थोड़ा बाह्य मुक्ता भी है? कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित तो नहीं करती? कभी मनमत कभी परमत आकर्षित तो नहीं करती? बहुत आकर्षण है मनमत में और परमत में। या कभी कभी थोड़ा मजा चख लेते हो, फिर जब धोखा खाते हो तो होश में आ जाए, परंतु होश में आने के लिए भी थोड़ा जरूरी है, कांटे होने चाहिए मार्ग में। किस लिए? जगाने के लिए, नहीं तो जागेंगे कैसे हम? थोड़े कांटे हो मार्ग में, पत्थर होने चाहिए, वो पत्थर होगी सीढ़ी बनानी है। फिर है ही सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता, बाह्य मुक्ता से मुक्त हो गए। अच्छा, तो क्या सुना? तख्त नशीन, अकाल तख्त और दिल तख्त, दोनों तख्त नशीन रहने। कब? कर्म में होगे तो क्या होगा? कर्म श्रेष्ठ होंगे, कर्मेंद्रिया लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण होगी, और उसका फिर प्रत्यक्ष फल भी मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल तुरंत मिल जाएगा, शक्ति खुशी सब कुछ। फिर बाबा दुख के लिए कह रहे हैं, दुख एक बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, सुख क्या है और दुख क्या है इस पर रिसर्च करनी है, किसे हम सुख कहते हैं और किसे हम दुख कहते हैं, जो सुख है क्या वो सही में सुख है, जो दुख है उसका स्वरूप क्या है, क्यों आता है, कब आता है, क्यों हमको नीचे गिराता है, हमें वास्तव में चाहिए क्या, वास्तव में सुख चाहिए या अंदर की इच्छा केवल दुख की है, पीड़ा दर्द इससे एक अनजान सा प्रेम है व्यक्ति को जो खुद नहीं समझ पाता है, और जब दुखी होता है तो डूब जाता है उसमें, फिर उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, बाहर आता है और फिर उसमें डूबता है, ये इसी इसमें फंसा रहता है, ये चक्र में फंसा रहता है, दुष्चक्र है, ये कुचक्र है, इसे निकल ही नहीं पाता है। खुद दुखी होना, खुद दुखी किया भी किसने? दूसरों ने नहीं, संडे की मुरली बना, स्वयं जाल रचते हैं और उसमें फंसते हैं। परदर्शन चक्र में था ना, स्वयं ही जाल की रचना करते हैं, हमारे दुखों स्वयं निर्मित है, किसने की वो रचना दुख की? हमने स्वयं ने की है, और हम चाहते हैं कि दूसरे को ही छुड़ाए, किसी के पास जाते और उनको मार्ग पूछते है, इससे कैसे छूटे, उससे कैसे छूटे, वो क्या छुड़ाएंगे? रचना हमारी है, हमारे ही संस्कारों के जाल में हम फंसे, हमारे स्वभाव के जाल में हम फंसे, हमारे दुख को स्वीकार करना और दुख की जो चाह है उसी में हम फंसे हैं। मेरा ही ऐसा कोई संस्कार है जो मेरे दुख का कारण है, बाहर की परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, उसने कुछ कहा, इसने कुछ गलत व्यवहार किया, इसका बिहेवियर ठीक ना, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं किया, ये तो बाहरी कारण है, ये कोई कारण ही नहीं है, हमारे दुख स्वयं निर्माण हो रहे हैं, संस्कार ही है एक अंदर बैठा हुआ, उस संस्कार को ढूंढना और उसे उससे मुक्त होना, ये लक्ष्य है। तो ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम भी ना हो और निशान भी ना हो, इतनी हमारी सुखदायी सुख स्वरूप अवस्था हो निरंतर, उसमें फिर वो पश्चाताप वाली बात भी है, कोई पश्चाताप ही नहीं, क्षमा मांगने का काम ही नहीं, ऐसा पश्चाताप जो परिवर्तन के साथ जिसे प्रायश्चित कहते हैं वो अवस्था हो, कि फिर ना तो क्षमा मांगने की जरूरत ना तो पश्चाताप करने की जरूरत, बार बार गलती करो, बार बार क्षमा मांगो, फिर गलती करो, फिर पश्चाताप, फिर क्षमा, बस इसी में लगे हुए गोल 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 घूम रहे। फिर बाबा की कुटिया में जाके पत्र लिखो और डाल दो, और फिर वापस वही गलती। कितने पत्र लिखे हैं, बहुत लिखते हैं लोग, पत्र लिखो और हो गया, हल्का हो जाओ। हल्का होते हैं क्षणिक हल्का बने के बस। महसूसता के साथ पश्चाताप, पश्चाताप एक बड़ी बहुत ऊंची चीज है। किसी महाराज किसी राजा के हाथ से कोई पाप हो जाता था तो वो अनुष्ठान करते थे, 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं करते थे, वो भी जरूरी था। क्यों? भोजन के लिए नहीं, परंतु वो समय जो था, जो भोजन से दूर रहते थे, उस समय केवल उस पाप का चिंतन होता था और गहराई से उसके ऊपर सोचते थे, और फिर संकल्प आता था कि अभी नहीं करेंगे इसको। हमारा पश्चाताप बहुत ही क्षणिक है, केवल बाबा के कमरे में इधर उधर जाके चिट्ठी लिख देना, बस यहाँ तक ही सीमित है। बाद में उसका कोई चिंतन नहीं है। हम सोच रहे हैं कि बता दिया सब कुछ, हल्का हो गए, हो गया खत्म। वो गलती पुनः होगी क्योंकि चिंतन नहीं किया उसके ऊपर। वो हुई क्यों, उसका जो सोर्स था वो कहाँ है, उसका उद्गम स्थान क्यों हुई, क्यों हुई पर रिसर्च अगर किया जाए, अनुसंधान अगर किया जाए, तो पता चलेगा ये मेरा ही एक संस्कार था 10 साल पुराना, उसके वजह से ये गलती हुई। वो व्यक्ति तो केवल एक ट्रिगर फैक्टर था, बस कारक, जस्ट एक फैक्टर था, एक उत्तेजना थी, पर हुआ अंदर से ही। उस संस्कार को मिटाना ये लक्ष्य है। तो ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, दिल खुश तो जहान खुश। ये दो वाक्य बहुत सुंदर है, इसको याद रखो। और हम किसकी संतान है, सुखदाता की संतान है, और दुख लेना ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी जबरदस्ती दे हमारे मुंह में ठूसे दुख। जैसे वो कैदी लोग थे ना, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु, वो जब जेल में थे और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और सारा देश ये हो रहा था उनके सपोर्ट में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, दूध के पाइप बनाए और उसके मुंह में डाले कि पियो पियो, ये मरने नहीं चाहिए, फिर भी नहीं पिया उन्होंने। तो दुख देने वाला कितना भी दुख दे, अपनी सारी कोशिश सारा लगा दे कि ये दुखी हो जाए, बस दुखी इतना दुखी हो जाए कि इसके साथ दुखी होना हो। किसी को दुखी करना बहुत आसान तरीका है, उसको ऐसे ऐसे बोल बोलो कि वो दुखी हो जाए, जिसको उस पर स्वयं को जिस पर गुमान है वही बात के लिए उसको कुछ बोलो तो दुखी हो जाता है व्यक्ति। जो व्यक्ति समझता है ये बात में तो मैं बहुत परफेक्ट हूँ, कोई आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को लगता है मैं बहुत, कोई कहे कि ये क्या बनाया बकवास, तो दुखी हो जाएगा वो। कोई समझता है मैं रंगोली बहुत अच्छी निकालती हूँ, रात भर बैठ कर निकाली पांडव भवन में, दूसरे दिन आके बोलो ये कौन है, दूसरी बनाओ, ये ठीक नहीं लग रही है, कलर तो बहुत ही खराब है। किसी को ये गुमान है कि भाई मैं भोजन बहुत अच्छा बनाता हूँ, भोजन बनाया उसने 4 घंटे में, उसको बोला ये कोई भोजन है, तो हो गया ना दुखी। कितना आसान है किसी को दुखी करना, जो जिसकी जिसमें कला है या वो समझता है कि इसका मेरा बहुत अच्छा है, कोई डॉक्टर है समझता है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता हूँ, उसके टेबल पे फेंक किया दवाई, ये कोई दवाई है, 10 दिन से खा रहा हूँ, 5% भी फर्क नहीं है, तो दुखी हो जाएगा ना। ठीक तो व्यक्ति अपने विश्वास से ही होता है, जिसका जिस पर विश्वास है वो अगर राख भी मिल जाए उससे तो वो ठीक हो जाएगा। जो दंतदार वन में कहीं ठीक नहीं होता है व्यक्ति, वो झाड़ फूक वालों से ठीक होता है, क्योंकि उसका विश्वास है वहां पर, लॉ ऑफ फेथ। जिसका जहां पर विश्वास हो उसी से ठीक होगा, जिसका विश्वास ही नहीं उसको जो भी ट्रीटमेंट दो कभी ठीक नहीं होगा। तो दुख चाहे कोई कितना भी दुख दे, परंतु हमें दुखी नहीं होना है, इस बात को पक्का कर लो। अच्छा, ओम शांति।